समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे में मुझे यानी प्राची प्रिया को। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रस्तुत करता है शिफाली सिंह।
हेलो प्राची।
शिफाली, झमझमाते बारिश में घर से निकलना यूं तो थोड़ा मुश्किल होता है, मगर आज जब मैं सुबह सुबह दफ्तर के लिए रवाना हुई
जी,
तो देखा कि समूची चौहद्दी जलमग्न है। ये देखकर मेरे मन में एक शेर आया कि दूर तक फैला हुआ पानी ही पानी हर तरफ, अब के बादल ने बहुत की मेहरबानी हर तरफ।
क्या बात है प्राची, आई वुड अग्री विथ यू ऑन दैट।
बारिश तो फिर भी बारिश है, मगर हवाओं का मस्करापन भी देखिए कि उस पर भी मुझे मेरे दिमाग में पंक्ति आई। भाई, यही क्रिएटिव माइंड का तो यही काम होता है।
बिल्कुल,
फलक पर उड़ते जाते हैं बादलों को देखता हूं मैं,
वाह वाह।
हवा कहती है मुझसे, ये तमाशा कैसा लगा।
क्या बात है प्राची।
निसंदेह आज मौसम का मिजाज बहुत खुश रंग है, मदमस्त बादल झूम के देश के कई हिस्सों में बरस रहे हैं बिना ये परवाह किए कि कौन क्या कहेगा। तो आइए इसी उत्साह के साथ हम शुरू करें कार्यक्रम आज सवेरे।
जी प्राची, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। तो लिसनर्स, प्राची ने तो हम सबका जोश और उत्साह बढ़ा दिया है, और इसी जोश उत्साह को साथ लेते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। नाउ व्हाट इज दैट? नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अगस्त 29th टू ऑनर मेजर ध्यानचंद, अ लेजेंडरी हॉकी प्लेयर। दिस डे मार्क्स हिज बर्थ एनिवर्सरी एंड अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। एंड एज वी ऑल नो पीपल, स्पोर्ट्स डोंट जस्ट बिल्ड चैंपियंस, दे बिल्ड कैरेक्टर। और प्राची, जब हम आ भी रहे होते हैं आकाशवाणी भवन दिल्ली में ऑफिस की ओर, तो अक्सर हम इंडिया गेट के पास से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम क्रॉस करते हुए आते हैं। तो एवरी टाइम आई सी दैट प्लेस, एक अलग ही लहर ऑफ इंस्पिरेशन दौड़ उठती।
जरूर जरूर।
और
जरूर।
अभी तो पैरालंपिक्स का
भी टाइम है, उनका नाम पढ़ करके ही दिल में एक गर्व होता है ना?
जी बिल्कुल, और अभी पैरालंपिक्स का भी टाइम है, तो आई थिंक नेशनल स्पोर्ट्स डे हैज कम अप एट अ वेरी एप्ट टाइम एंड मोमेंट। सो इसी के साथ विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज डियर लिसनर्स 29th ऑफ अगस्त। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट प्राची।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रगति की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रगति की यह पहली बैठक थी। बैठक में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें सड़क संपर्क और रेल की 2-2 परियोजनाएं तथा कोयला, बिजली और जल संसाधन की 1-1 परियोजना शामिल है। इसकी लागत 46,000 करोड़ रूपये है।
Founder and CEO of messaging application Telegram, Pavel Durov, was released after paying a 5 million euro bail, but he's required to report to the police twice a week. Paris public prosecutor Laure Bekau said Durov is officially placed under investigation on 6 charges and he has been prohibited from leaving France during the investigation. Durov was arrested by French police at an airport outside Paris on Saturday night. The Telegram founder is accused of several criminal offences, including failing to act against Telegram users involved in cyberbullying, sharing paedophilic content and glorifying terrorism. In response to the arrest, the Telegram group said that the company abides by European Union laws, including the Digital Services Act.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना का परिव्यय 4,136 करोड़ रुपए है, जिसे 2024-25 से 31-32 तक लागू किया जाएगा। योजना के अंतर्गत लगभग 15,000 मेगावाट की संचयी जल विद्युत क्षमता को समर्थन दिया जाएगा। यह योजना राज्य सरकार के साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की सभी परियोजनाओं के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन का प्रावधान करती है।
Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal has approved the wage structure revision of the major port workers. A memorandum of understanding was signed between the Bipartite Wage Negotiation Committee and Indian Port Association for the revision of wage structure and addressing other service conditions, including pensionary benefits. After the MOU was signed, Mr. Sonowal said that it marks a significant step forward in ensuring fair and equitable treatment for the port workers. He also added that this agreement reflects the ministry's commitment to foster a harmonious and productive working environment across all ports of the country.
मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों में 730 निजी एफएम चैनलों की ई नीलामी कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय से मातृभाषा में स्थानीय सामग्री के प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्वीकृत शहरों में कई आकांक्षी जिले हैं और कुछ वामपंथी उग्रवाद से भी प्रभावित हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल के निर्णय से श्रेणी 2 और 3 के शहरों में एफएम रेडियो की पहुंच बनेगी। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को भी मंजूरी दी। कृषि अवसंरचना कोष किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ वर्ष 2020 में स्थापित किया गया था।
Former Jharkhand Chief Minister Champai Soren has resigned from the post of minister from Hemant Soren government and all posts of Jharkhand Mukti Morcha. In a letter to JMM President Shibu Soren, he said, working style and policies of the party have compelled him to quit the party. Mr. Soren was holding portfolio of Water Resources Department besides higher education and technical education portfolios. Champai Soren, who is scheduled to join the BJP tomorrow, also resigned as MLA of Seraikela constituency. Mr. Soren said his decision to join BJP is in the interest of Jharkhand.
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 6,456 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं यात्रा को आसान बनाएंगी, लॉजिस्टिक लागत, तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगी।
Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat on 4th consecutive day. Several districts of Saurashtra, especially Devbhoomi Dwarka, Jamnagar, Porbandar, Rajkot and Kutch district recorded very heavy rainfall during the last 24 hours. Our correspondent reports that although the intensity of rains was reduced in flood-affected regions of central Gujarat, especially Vadodara, a large number of areas are still underwater and relief and rescue operation is underway. Our correspondent reports that at least 25 people lost their lives in the rain-related incidents in the state during the last 4 days.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं और विशेष रूप से राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारण पता लगाने के लिए सड़कों का ऑडिट कराया जा रहा है। इसके अलावा एम्बुलेंस वाहनों और उनके कर्मचारियों को भी नई प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे दुर्घटना स्थलों से घायल लोगों को समय पर बचा सकें। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में 6वें फिक्की सड़क सुरक्षा पुरस्कार और सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
स्पोर्ट्स नाउ। Paralympic Games 2024 have been officially inaugurated with a grand opening ceremony in Paris. French President Emmanuel Macron declared the games open during a colourful ceremony in the heart of Paris. A total of 4,400 Paralympians representing 167 nations marched from Champs-Élysées to Place de la Concorde. Tokyo 2020 gold medalist javelin thrower Sumit Antil and world record holder table tennis player Bhagyashree Jadhav led the Indian contingent. A total of 84 Indian para-athletes will compete in this edition of the Games. It is India's largest contingent in Paralympic history. India will compete in 12 of the 22 sports scheduled at the event. Krishna Nagar will aim to defend his men's singles title in badminton, while Avni Lekhara and Manish Narwal are set to take aim in shooting. Archery, cycling, taekwondo, swimming and table tennis are other events where Indians will be seen in action from today. Athletics will begin from tomorrow, where 38 Indian athletes will participate. The spotlight will be on javelin thrower Sumit Antil and table tennis player Bhavina Patil. The Paris Paralympics will conclude on September 9 with the closing ceremony.
चलिए अब शुरू करें हम वो कार्यक्रम जहां पर हम मेट्रो खबरें।
जी बिल्कुल प्राची, और हम शुरुआत करेंगे चेन्नई से, Data science and application students in bachelor degree at the Indian Institute of Technology will be able to complete their degree credits through on-campus courses at Indian Institute of Technology, Ropar. Both institutions have signed a memorandum of understanding to offer students a direct pathway to IIT's MS program without the need for GATE scores, a crucial metric used for admission to postgraduate programs in engineering colleges. Eligible students can spend up to a year at IIT Raipur, take up research projects and pursue internships. And now, dear listeners, Bengaluru News. The Karnataka Skill Development Minister, Dr. Sharan Prakash Patil, gave farewell to the 9 students of Karnataka who are proceeding to France to compete in the 47th World Skills Competition to be held in Lyon, France. He interacted with the students with encouraging words to do their best at the world competition. Often referred to as the Olympics of Vocational Skills, the World Skills Competition will be held from September 10th to 15th. These students will compete with 1,000 other young participants in over 61 skill categories. All the competitors will be under the age of 22. The selection of the students to represent India at the world competition was done by the National Skill Development Corporation. So Prachi, it's interesting ki pehle sports Olympics the, fir Paralympics, aur ab hamare paas ye skills ka Olympic hai.
Bilkul, bilkul.
So vocational Olympics, as they call it. And now, listeners, moving on to news from Hyderabad. In Telangana, 10 cities and towns from the state are among the 234 uncovered areas in the country for rolling out private FM radio. The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Narendra Modi, approved the proposal yesterday for conducting the third batch of ascending e-auctions for 730 channels in 234 new cities with an estimated reserve price of 784.87 crore rupees under private FM radio phase 3 policy. The Cabinet also approved the proposal to charge annual license fee, ALF, of FM channels as 4% of gross revenue excluding goods and services tax, GST. This will be applicable for 234 new cities and towns. The private FM radio rollout in 234 new cities and towns is expected to fulfill the unmet demand for FM radio and bring new and local content in mother tongue. Aur Prachi, hum radio mein baithe to yahi chahenge ki radio bade aur uska reach bhi bade aur locals usme bahut shamil hon.
Bilkul, bilkul. Ye to bahut zaruri hai.
Yes, so we are all for it. And now, listeners, moving for over to Prachi for news from Delhi, Mumbai and Kolkata.
To le chalte hain aapko sabse pehle Delhi ki taraf. Aam Aadmi Party ke kai varishth netaon ne Congress ki sadasyata grahan ki. Is avsar par Delhi Congress adhyaksh Devendra Yadav ne unka swagat karte hue kaha ki in netaon ne Aam Aadmi Party ke kathit adhure vaadon se nirash hokar unhone Congress ka daman pakda hai. Unhone aasha jatayi ki navsammelit sabhi neta party ke uddeshyon ko anjam tak pahunchane mein apna mahatvapurna yogdan denge. सर्दियों में वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार एक विशेषज्ञ सम्मेलन आयोजित करेगी. एक प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा पर्यावरण मंत्री कार्यालय ने बताया कि यह सम्मेलन पर्यावरण विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के साथ मिलकर दिल्ली सचिवालय में किया जाएगा. इस सम्मेलन में केंद्रीय प्रदूषण जांच बोर्ड, पर्यावरण विभाग, मौसम विभाग और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग समेत 78 विभागों और संस्थाओं के पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस सम्मेलन द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर शीतकालीन कार्य योजना बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि इस वर्ष जन भागीदारी के द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करना हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य रहेगा. सम्मेलित सभी नेता पार्टी के उद्देश्यों को अंजाम तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र के नई दिल्ली परिसर के एक कार्यशाला में शामिल हुए. सभा में उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं और शिक्षा प्राप्ति तब संपूर्ण होती है जब विद्यार्थी को अपनी संस्कृति का भी ज्ञान हो जाए. श्री शेखावत ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है जो गर्व के साथ कह सकेगी कि उन्होंने भारत को बदला है. दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए राजधानी के नागलोई स्थित प्रेम नगर में स्वयं सहायता समूह के साथ बैठक की. इस बैठक के दौरान जल बोर्ड ने समूह को जल और यमुना का संरक्षण करने के लिए सूचना और जानकारी प्रदान की. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा राजधानी के वसंत विहार इलाके के स्कूल में नशे को ना कहें और जीवन को हां अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों को नशीली दवाओं के दुरूपयोग और उससे जुड़े गंभीर खतरों के बारे में शिक्षित करना था। इस दौरान छात्रों को एक स्वस्थ और दवामुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित भी किया गया। दिल्ली सरकार ने राजधानी के दो नए मार्गों पर मोहल्ला बस का परीक्षण शुरू किया। ये बसें अगले 7 दिनों तक कैलाश कॉलोनी मेट्रो से पीएनबी गीतांजलि तक तथा लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से वसंत विहार तक चलेगी। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज तथा विधायक सोमनाथ भारती और परमिला टोकस ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में मोहल्ला बसों को हरी झंडी दिखाई। मीडिया से बात करते हुए श्री भारद्वाज ने कहा कि इससे लोगों को मेट्रो स्टेशन से लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी मिल सकेगी। चलते हैं मुंबई समाचार की तरफ। मुंबई और उसके उपनगरों सहित पूरे महाराष्ट्र में बीते दिनों दही हांडी उत्सव मनाया गया, जिसके दौरान मुंबई में कुल 245 गोविंदा घायल हो गए। गोविंदाओं के मानव पिरामिड बनाकर दही हांडी तोड़ने की कोशिश करते समय गिरने से घायल हो गए। घायलों का सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में इलाज किया गया। घायलों में 213 गोविंदाओं को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 32 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस यात्रियों को 28 से 30 अगस्त तक सुबह 9 बजे शाम 8 बजे के बीच बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में संभावित ट्रैफिक जाम से बचने के लिए जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड, सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड और ईस्टर्न फ्रीवे जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दे रही है। ये मेगा इवेंट बीकेसी में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने बेहतर गुणवत्ता वाले आलू उगाने का फैसला किया है और इसके लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस साल 50 लाख उच्च गुणवत्ता वाले आलू उगाने के लिए एपिकल रूटेड कटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य सरकार के कृषि मंत्री सोवेन देव चट्टोपाध्याय ने राज्य सचिवालय नब्बान में इसी विभाग के कृषि वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। राज्य में आलू का उत्पादन तो बहुत होता है, लेकिन आलू के बीजों को संरक्षित करने में राज्य आत्मनिर्भर नहीं है। मसूर, मक्का और सरसों के बीजों के साथ साथ उन्नत आलू के बीजों का भी उत्पादन किया जाएगा। और अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। दिल्ली में आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और लगातार मध्यम बारिश होने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। वहीं अगर बात मुंबई की करें तो मुंबई में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होगी। न्यूनतम तापमान यहां 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने के संकेत हैं। बात करें कोलकाता की तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है।
Yes, Prachi, and now let's have a look at the weather of our southern cities as well. Chennai is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and maximum will be around 32 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky in the morning. Hours becoming generally cloudy sky towards evening or night with possibility of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius. So Prachi, hum keh sakte hain that largely it's going to be rainy and cloudy today all over the country, and okay. What we are witnessing is probably monsoon's prime right now. So now let's move over to history.
Zarur.
And we'll have a look at what all important events happened on this day across the years, over the past. So let's start with way back in time on 29th August in 1612. Battle at Surat in India took place. The English fleet beat Portuguese.
और आज के ही दिन सन 1945 में ब्रिटेनिया सरकार ने हांगकांग को जापान से मुक्त कराया।
In 1947, Dr. Baba Saheb Ambedkar became the president of the Constitution Council. And in the year 1956, India got a $360 million loan as food aid.
और आज के ही दिन सन 1957 में कांग्रेस ने नागरिक अधिकार अधिनियम 1957 पारित किया।
In the year 1984, Indian Airlines Boeing 737 with 68 passengers and a crew of 6 hijacked in Lahore.
और सन 1974 में चौधरी चरण सिंह की अध्यक्षता में लोक दल पार्टी की स्थापना हुई.
In the year 1998, Prasar Bharati Ordinance was promulgated and in the year 1998, Sachin Tendulkar received the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award and Joginder Singh Saini received the Dronacharya Award while several other leading sportsmen received Arjuna Award from President K.R. Narayanan in Delhi.
बिल्कुल. और आज के ही दिन शिफाली सन 1987 में कर्नल राबुका ने फिजी को गणराज्य घोषित किया.
जी
बढ़ते हैं हम अपने अगले चंक की तरफ.
जी आई वुड से इट्स माय फेवरेट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर वी गेट टू डिस्कस पर्सनालिटीज.
शिफाली ये हम सब का फेवरेट पार्ट हुआ करता है और होता है, इसलिए हम इसको बहुत ही जोरों शोरों से डिस्कस भी तो करते हैं.
जी बिल्कुल. सो डियर लिसनर्स, टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ काजी नजरुल इस्लाम, अ बंगाली पोएट, राइटर, जर्नलिस्ट एंड म्यूजिशियन. नजरुल्स वर्क्स इंक्लूडेड थीम्स ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, एंटी इंपीरियलिज्म, ह्यूमैनिटी, रिबेलियन अगेंस्ट ऑपरेशन एंड रिलीजियस डिवोशन. Nazrul Islam's activism for political and social justice as well as writing a poem titled as Bidrohi, meaning the rebel in Bengali, earned him the title of Bidrohi Kobi or the rebel poet. His compositions form the avant-garde music genre of Nazrul Geeti. So what we are listening to is a song.
রাস বিলাসিনী আমি আহিরিনী, রাস বিলাসিনী.
নামচীন ভারতীয় হকি খিলাড়ি জিনোনে আপনি মেহনত সে ভারত কা নাম বিশ্ব পটল পর আপনি হকি স্টিক সে লিখা, ও থে মেজর ধ্যানচন্দ. কিউ শেফালি,
বিলকুল,
আজ ইনকি জয়ন্তী হ্যায়. মাননা হোগা কি হকি কে খেল মে ধ্যানচন্দ নে लोकप्रियता जो कमाई, जो उसका जो कीर्तिमान स्थापित किया, उसके आसपास भी आज तक दुनिया का कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है, ऐसा उनके फैंस कहते हैं.
जी
मेजर ध्यानचंद रात में क्योंकि अभ्यास करते थे इसलिए उनके जो उस वक्त के जो दोस्त हुआ करते थे वो उन्हें प्यार से चांद बुलाते थे, इसलिए उनका नाम ध्यानचंद. चंद यानी चांद. हाँ, उसी से प्रेरित है ये.
दैट्स एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट.
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए भी. दरअसल उनका ये अभ्यास चांद निकलने पर ही शुरू होता था क्योंकि दिन में काम करते थे, रेजिमेंट में थे, काम करते थे और रात के वक्त जो है वो खेल का अभ्यास करते थे. देखिए कितनी मेहनती है भाई.
वी कैन ऑल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट.
यस एब्सोल्युटली. हॉकी के इस जादूगर का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन जैसा हमने बताया कि प्यार से तो हम लोग उन्हें चांद बुलाते थे.
जी
तो इसी तरीके से इनकी जर्नी रही है और कभी भी जैसा हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि कभी भी हम जब देखते हैं उनका नाम किसी बड़े से बोर्ड पर लिखा हुआ,
बिल्कुल,
तो दिल कितना गौरवान्वित होता है.
जी बिल्कुल. और इसलिए आज हम नेशनल स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं टू ऑनर हिज बर्थ एनिवर्सरी. Moving on, dear listeners, today is the death anniversary of James Reid, also known as Jimmy Reid, an American blues musician and songwriter. His particular style of electric blues was popular with a wide variety of audiences. Reid's popular songs include Honest I Do, Baby What You Want Me to Do, Big Boss Man and Bright Lights, Big City. So let's listen to Honest I Do.
Don't you know that I love you? Honest I do, I never play no one above you.
और आज भारत की स्वतंत्रता सेनानी माधव श्रीहरि अणे की जयंती है. ये भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे. माधव श्रीहरि अणे लोकमान्य तिलक के से अधिक प्रभावित रहे, है ना? ये कुछ समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रहे. मैं आपको बता दूं कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह के समय इन्होंने जेल की सजा भी भोगी. सन 1943 से 1947 तक ये श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त भी रहे. आजादी मिलने के बाद इन्हें बिहार का राज्यपाल भी बनाया गया। यही होता है, काबिल व्यक्तित्व को जो है उनकी जगह मिल जाती है, पानी जो है वो अपनी सतत ढूंढ लेता है।
बिल्कुल।
सन 1914 में मैं आपको बताऊं शेफाली, जब तिलक जेल से छूट कर आए तो उन्हें सबसे पहले मिलने वाले जो व्यक्ति थे, मतलब जितने भी लोग उनसे मिले होंगे उनमें से एक प्रमुख जो थे वो अणे भी रहे।
ओके।
हाँ, जब होम रूल लीग की स्थापना हुई तो भी उनके उपाध्यक्ष जो उस होम रूल जो लीग है उसके जो उपाध्यक्ष रहे वो श्री अणे रहे। सन 1921 से 30 तक उन्होंने विदर्भ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता की। वे कुछ वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। स्वराज पार्टी की ओर से वे केंद्रीय असेंबली के सदस्य चुने गए और वहां अपने दल के मंत्री बने। कुछ इस तरह उनका जीवन भारत के प्रति समर्पित रहा। कितना सुखद है ना ये सब कुछ सुनना।
बिल्कुल। And dear listeners, today is the death anniversary of Jayashree Gadkar, a noted Marathi and Hindi movie actress and a star of Marathi cinema from the 1950s up to the 1980s. She entered films as a dancer in movies. Her first role was that of a group dancer in V. Shantaram's Jhanak Jhanak Payal Baje. Later, well-known Marathi film director Dinkar D. Patil cast her in a small role with dance in his Marathi film Disat Tasa Nasat. This was followed by Sangte Aika, a Tamasha-based movie which was the first in which she played a leading role. So let's listen to a Lavani number, Bugari Maji Sandaliga.
Hey, Bugari Maji Sandaliga. Sata sata jala, kutata sata jala. Sukandinaka sanguga. Maja mata jala, kumaja mata jala. Sugalinaka sanguga. Punidita mata.
और इतना खूबसूरत लावड़ी संगीत सुनने के बाद हम याद करेंगे गायिका ऋचा शर्मा को। आज उनकी जयंती है। एक भारतीय फिल्म पार्श्व गायिका तथा भक्ति गायिका हैं। उन्होंने सन 2006 की फिल्म बाबुल में बॉलीवुड का सबसे लंबा ट्रैक बिदाई गाया था। पंडित आसकरण शर्मा के सानिध्य में ऋचा ने भारतीय शास्त्रीय और सुगम संगीत में उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया था। शेफाली, ऋचा ने गजल, फिल्मी गाने, पंजाबी और राजस्थानी लोकगीत अपने प्रदर्शन में शामिल किए। कितना बेहतरीन अनुभव होता होगा उन लोगों के लिए, आप सोचिए, जो उन्हें लाइव बैठकर सुनते होंगे।
बिल्कुल। एंड वन शुड नेवर फॉरगेट वन्स रूट्स, सो ट्रेडिशनल एंड फोक सॉन्ग्स।
बिल्कुल। तो इस तरीके से उनकी जर्नी रही है। मुझे जहां तक याद है, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा और जाना, शुरुआत में उन्होंने अपनी रोजी रोटी सुनिश्चित करने के लिए, जो कि सब कोई हम करते ही हैं, एक कवर वर्जन जो है भजन उन्होंने गाना शुरू किया, अपना संघर्ष जारी रखा बॉलीवुड में। तो इस तरीके से उनकी जो एक पूरा एक जो करियर पाथ रहा, एक जो पूरी जर्नी रही। बहरहाल हम सुनते हैं उनका एक बहुत ही अच्छा सा भजन, होली आई रे कह।
ओके। और प्राची, क्योंकि हम आर्टिस्ट्स की बात कर रहे हैं, तो अब मैं चलती हूँ एक बहुत ही फेमस पॉपुलर कल्चर फिगर तक, जो कि है माइकल जैक्सन।
अरे
जी हाँ, ऑल द डांस लवर्स लाइक मी वुड रिमेम्बर हिम, एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थ एनिवर्सरी। ही इज एन अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर, डांसर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, डब्ड द किंग ऑफ पॉप। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कल्चरल फिगर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। थ्रू स्टेज एंड वीडियो परफॉर्मेंसेज ही पॉपुलराइज स्ट्रीट डांस मूव्स सच एज द मून वॉक, विच ही नेम्ड एंड द रोबोट, एंड सम ऑफ हिज फेमस म्यूजिक वीडियोज एंड सॉन्ग्स इंक्लूड बीट इट, बिली जीन एंड थ्रिलर, which are credited with breaking racial barriers as well. So let's listen to the song Beat It by Michael Jackson.
You wanna be tough, better do what you can, so beat it. But you wanna be bad, just beat it, beat it, beat it. There's no one with the beat it. Sure, I'm fucking strong, just like the, it doesn't matter who's stronger. Can't, don't wanna be a boy, you wanna be a man.
And dear listeners, today is also the birth anniversary of Richard Attenborough, an English actor, film director and producer. He won two Academy Awards for Gandhi in 1983, Best Picture and Best Director. Also, today is the birth anniversary of Ingrid Bergman, a Swedish actress and one of the most influential screen figures in cinematic history. And she is known for starring in Casablanca as Ilsa Lund. So let's listen to a song from the movie by Ingrid Bergman. In Casablanca.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
लेकिन अब वक्त हो चला है विदा लेने का. अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे को यहीं समाप्त करने की और सुनते रहिए हमें 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर.
नमस्कार.